दीवा का आज का दिन काफी भारी रहा था। पहले आर्यांश ने उसके साथ वो सब किया, तो फिर ऑफिस में बुलाकर सीधे सीधे उसके सामने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया था। दीवा आर्यांश से आगे बढ़ाकर वापस अपने बॉयफ्रेंड रक्षित से मिलने गई तो उसके सामने एक और नई सच्चाई आ चुकी थी। कल रात उसे ड्रग्स देकर मिस्टर सिंह को बेचने वाला शख्स रक्षित था। ऊपर से उसका उसी की फ्रेंड कनिष्का के साथ अफेयर भी चल रहा था। पहले आर्यांश तो बाद में रक्षित, दीवा का दिल बहुत दुखी था। घर पर आई तो दीवा के ऊपर एक नया बम फूट चुका था। उसके डैड मिस्टर नवीन गोयंका को गबन के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया गया था। दीवा की मॉम प्रार्थना ने बताया कि ये सब कनिष्का ने किया है। एक एक करके सब उसे धोखा देते जा रहे थे। 500 करोड़ रुपए चुकाना कोई छोटी बात नहीं थी, ऊपर से उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। कुछ भी करके दीवा को अपनी फैमिली को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना ही था। उसने गहरी सांस ली और प्रार्थना की तरफ देखकर शांत लहजे में कहा, डोंट वरी मॉम, हम इन सब से बाहर निकल जाएंगे। ये फैसला काफ़ी मुश्किल है, पर हमें हमारा घर और इसमें रखी सभी एसेट्स को बेचना होगा। उतने में हमारे पास 500 करोड़ रुपए आ जाएंगे। घर बेचने का सुलकर प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो घर उन्होंने काफ़ी प्यार से डिज़ाइन करवाया था। प्रार्थना ने खुद को संभालते हुए दीवा से कहा, ये बहुत मुश्किल होने वाला है और नवीन को पता चला तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा, पर उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हालांकि पुलिस जांच कर रही है, पर मुझे उन पर यकीन नहीं है। जब ये सब ठीक हो जाएगा तब हम इस घर को फिर से हासिल कर लेंगे मॉम, दीवा ने प्रार्थना का हाथ सहलाते हुए कहा और फिर उसके गले लग गई थी। दीवा को अंदर अंदर काफ़ी घबराहट हो रही थी, पर वो अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं कर रही थी। अब उसे ही अपनी मॉम को संभालना था और अपने डैड को भी बाहर निकालना था। दीवा को इस तरह हिम्मत करते देखा, प्रार्थना को भी हिम्मत मिल रही थी। आज की रात दीवा प्रार्थना के साथ ही सो रही थी। अगली सुबह दीवा कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर एक पेपर पर लिख रही थी ताकि उनसे घर बेचने की बात कर सके। उनसे अलग प्रार्थना उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। दीवा और प्रार्थना अपनी तरफ से नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी तभी उन्हें दरवाजे पर किसी की आवाज़ हुई। दीवा और प्रार्थना ने सामने की तरफ देखा तो वो रक्षित था। उसे देखते ही दीवा की गुस्से में मुट्ठी बंध गई थी। उसने तेज सांस लेते हुए कहा, ये इंसान और कितनी बेशर्मी दिखाएगा, इतना सब कुछ करने के बाद भी यहाँ पर मुंह उठाकर चला आया है। दीवा का मन किया कि वो रक्षित का मुंह तोड़ दे। वो उठकर उसके पास जा रही थी कि रक्षित खुद ही उसके पास चला आया। उन दोनों को देखते हुए रक्षित ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मानना पड़ेगा तुम दोनों माँ बेटी के बीच काफ़ी प्यार है। बाप के जाने के बाद माँ के साथ रिश्ता गहरा कर रही हो दीवा गोयंका। दीवा रक्षित के चेहरे की तरफ देख रही थी, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। इसका मतलब कि वो एक बार फिर अपने बुरे इरादों के साथ वहाँ पर आया था। जहाँ दीवा खुद को शांत करके रक्षित के इरादे समझने की कोशिश कर रही थी तो वहीं प्रार्थना गुस्से में उस पर झपट पड़ी थी। प्रार्थना ने रक्षित का कॉलर पकड़ा और फिर गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम बेशरम इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ करके भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए यहाँ पर आ गए? मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ और तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकलवाती हूँ। रक्षित ने सिर हिलाया और फिर अपने कॉलर से प्रार्थना के हाथ अलग किए। वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे आंटी, आप तो गुस्सा हो गई। पहले जब मैं आता था तो कितना प्यार से मेरी खातिरदारी करती थी। चलिए जाइए, मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आइए, बैठकर प्यार से बात करते हैं। अपनी बात खत्म करके रक्षित वहां सोफे पर प्यार पर पैर रखकर बैठ गया था। वो किसी किंग की तरह बैठा हुआ था। दीवा ने रक्षित को घूरते हुए पूछा, सीधे सीधे बताओ यहाँ क्यों आए हो? मैं तो बस यहाँ किसी काम से आया हूँ, अपनी खास चीज़ लेने के लिए आया हूँ, रक्षित ने कंधे उचकाकर बेपरवाही से कहा। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, दीवा ने सख्ती से जवाब दिया। कुछ है तभी यहाँ आया हूँ ना बेबी, वरना क्यों आऊँगा? वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? रक्षित बोला, मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती रक्षित दीवान, सो जो भी है लो और निकलो यहाँ से, दीवा ने दांत पीसते हुए कहा। इतना सब कुछ करने के बाद भी रक्षित उसके सामने खड़ा बिना किसी शर्म के उससे बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इतनी गलतियां करने के बाद भी रक्षित को कोई पछतावा नहीं था। रक्षित ने गहरी सांस ली और विक्ट्री स्माइल के साथ कहा, मैंने कल रात बिल्कुल ठीक कहा था दीवा गोयंका, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने घर से दो फालतू के सामान को बाहर निकाल सकूँ, और वो फालतू सामान तुम और तुम्हारी माँ हो। हाँ तो कोई मुझे बाहर निकालने के लिए कह रहा था? बेहतर होगा कि तुम दोनों जल्दी से मेरे घर से बाहर निकल जाओ, इतना कहकर रक्षित हंसने लगा। वहीं दीवा को लग रहा था कि कोई इस वक्त उसके साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा था। जिस इंसान से वो अपने मम्मी पापा के बाद सबसे ज्यादा प्यार करती थी, आज उसे उसी से सबसे ज्यादा नफरत हो रही थी। दीवा ने खुद को मजबूत करके कहा, खुली आंखों से सपना देखना बंद करो रक्षित दीवान, जल्द ही पुलिस पता लगा लेगी कि मेरे डैड को तुमने फंसाया है और फिर उनकी जगह तुम जेल की सलाखों के पीछे होंगे।
एक बात मुझे बताओ कि मेरा घर तुम्हारा घर कब से हो गया? बोलते हुए दीवा की आवाज कांपने लगी थी। न जाने किस्मत उसी की ही परीक्षा क्यों ले रही थी जो पिछले दो दिनों में उसकी जिंदगी उसे ये मंजर दिखा रही थी। अंदर से वो कितना भी स्ट्रांग रहने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक तूफान सा उठा हुआ था। रक्षित दीवा के पास आया और उसके गाल पर उंगली घुमाते हुए कहा, ओ तुम्हारा बाप, वो अभी भी तुम लोगों से झूठ बोलता है। उसने तुम लोगों को बताया नहीं कि पिछली बार उसने एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लोन उठाया था। गारंटी के तौर पर उसने ये घर रखा था। लोन के पैसे मैंने चुका दिए हैं तो घर मेरा हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते, दीवा गुस्से में बोली और उसने रक्षित का कॉलर पकड़ लिया था। रक्षित ने गुस्से में दीवा को खुद से दूर धकेला तो वो जमीन पर जाकर गिर गई थी। प्रार्थना जल्दी से दीवा के पास आई और उसे उठाते हुए बोली, दीवा बेटा तुम ठीक हो ना? दीवा को रोने का मन कर रहा था लेकिन उसने खुद को बखूबी संभाल रखा था। उसने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया था। दीवा और प्रार्थना आपस में लगी हुई थी तब रक्षित ने तेज आवाज में कहा, अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के पेपर दिखा देता हूँ, फिर तो यकीन हो जाएगा ना। दीवा ने कुछ नहीं कहा पर उसके बावजूद रक्षित ने तेज आवाज में अपने वकील को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर पाठक अंदर आइए और डियर दीवा गोइंगा को पेपर दिखाइए। ये लड़की इतनी बेवकूफ है कि सच इसके साथ आंखों के सामने भी हो तो फिर भी इसे यकीन नहीं होता है। रक्षित बार बार दीवा का अपमान कर रहा था। कॉन्ट्रैक्ट के पेपर लेकर मिस्टर पाठक अंदर आ चुके थे। वो दीवा को पेपर दिखाने लगे थे। पेपर पढ़ने के बाद दीवा को सब समझ आ गया था कि कैसे शुरू से ही रक्षित और कनिष्का उसके डैड को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। दीवा की आंखें नम होने लगी थी। प्रार्थना ने दीवा का हाथ पकड़कर कहा, चलो हम अपना सामान लेकर यहाँ से चलते हैं।
जैसे ही दीवा और प्रार्थना अपने कदम बढ़ाने को हुई, रक्षित ने पीछे से तेज आवाज में कहा, एक और चीज, अपने कपड़ों के अलावा किसी दूसरी चीज को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि इस घर में रखा हर एक कीमती सामान मेरा है। दीवा और प्रार्थना पूरी तरह टूट चुकी थीं। उन्होंने सोचा था कि वे इस घर को बेचकर नवीन गोयंका को आजाद करवा देंगे, लेकिन अब तो उनके खुद के सिर से छत तक छिन गई थी। ऐसे में दीवा कैसे अपने डैड को बाहर निकलवा सकती थी? ऊपर से रक्षित ने सब कुछ फुल प्लानिंग से किया था, तो इससे साफ था कि उनकी मुसीबतें यहीं खत्म होने वाली नहीं थीं।